शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने दो बहुत बड़ी श्रीमत दी है। मुझे याद करो ये तो श्रीमत रोज मिलती ही है, लेकिन आज बाबा ने दो बड़ी श्रीमत दी है बच्चों को। पहली श्रीमत है, बच्चे बाबा के राइट हैंड बनो, राइट हैंड बनो, दायां हाथ। तो दायां हाथ की विशेषता क्या होती है? दायां हाथ के द्वारा अच्छे कर्म किए जाते हैं, शुभ कार्य किया जाता है। भोजन भी वैसे दाएं हाथ से खाना होता है, दान भी दाएं हाथ से करना होता है, प्रसाद भी लेते हैं तो दाएं हाथ से लेना होता है, बायां हाथ इसके लिए नहीं होता है। कई आते ना, तोली देते तो बायां हाथ आगे करते, हम कहते नहीं दायां हाथ आगे करो। बाबा का प्रसाद ले रहे हो और बायां हाथ आगे कर रहे हो तो बाबा तो मना करते हैं, नहीं देते हम बाएं हाथ में, हम कहते दायां हाथ आगे करो। तो ये दायां हाथ शुभ कार्य करने वाला है, तो इसीलिए तुम बच्चे बाबा के दाएं हाथ हो, राइट हैंड हो, तुमको सदा ही शुभ कार्य करना है। केवल कार्य शुभ करना ही नहीं है, बोलना भी है, शुभ बोलना है, शुद्ध बोलना है, शक्तिशाली समर्थ बोल बोलने हैं, वरदानी बोल बोलने हैं। और दूसरी श्रीमत बाबा ने दी है, आपस में कभी मतभेद में नहीं आना। कई बार बच्चे मतभेद में आते हैं, एक ने कोई राय दी, कोई बात कही, दूसरे ने उसको काटा, क्योंकि वो समझता है कि उसकी राय ठीक नहीं है, मैं जो कहता हूं वही ठीक है। तो फिर आपस में मतभेद में आ जाते हैं, फिर मतभेद होते होते मन मुटाव हो जाता है, फिर लड़ना झगड़ना चालू हो जाता है। इसलिए बाबा हमेशा हमें क्या कहते हैं, बच्चे मालिक भी बनो और बालक भी बनो। मीटिंग होती है तो मालिक बन के अपनी राय दो, मना नहीं है, क्योंकि मीटिंग में सब अपनी अपनी राय देते हैं, लेकिन जो राय सबको स्वीकार्य हो उसको आपको भी स्वीकार करना है। ये नहीं कहना है कि नहीं मेरी राय क्यों नहीं मानी गई, तो उस समय बालक होकर के उसको स्वीकार करना है। जिसको ही कहा जाता है, एक ने कहा दूसरों ने माना, दोनों आत्मज्ञानी है, क्योंकि उसने नम्र होकर के उसको मान लिया। नहीं तो मनुष्य अभिमान में आकर के लड़ना चालू कर देता है, मेरी बात ही होनी चाहिए, मैं जो कहता हूं वही सही है, मेरे द्वारा ही मैं ही ज्यादा समझदार हूं। तो ये मैं जो अभिमान आ जाता है, बाबा कहते वो नहीं होना चाहिए। तो मिल करके कार्य करना, तभी ही सेवा में सफलता है। तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी ये दो मुख्य श्रीमत दी है, जो हम सबको पालन करनी है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य, आज 4/8/2026 है। मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, हर बात में राइटियस बनो, शुभ कार्य करो, हर बात में सही कार्य करो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। हमारे आगे दीदी और दादी बहुत सुंदर उदाहरण थे, कैसे दोनों मिल करके कार्य करते थे। भले दोनों ही महान आत्माएं थी, दोनों के विचार ऊंचे थे, लेकिन एक ने कहा दूसरे ने माना। दीदी ने कोई बात कही, दादी तुरंत मान लेती थी। दादी ने जो कहा, दीदी तुरंत मान लेती थी। तो दोनों आत्मज्ञानी, देखो दोनों ने मिलके कैसे साकार बाबा के बाद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ाया। हमारी सब दादियां ऐसे ही थी। दादी जी ने जो कहा, चंद्रमणि दादी के जी दादी, जानकी दादी के जी दादी, सब इतना प्यार देते थे, सम्मान देते थे। हालांकि बड़ी दादी कईयों से छोटी थी, है ना, लेकिन बड़ी दादी को सब सम्मान देते थे। दीदी भी सम्मान दे, दीदी तो बहुत बड़ी थी दादी की भेंट में, लेकिन दोनों एक दो को इतना सम्मान देते थे, तभी तो सेवाएं इतनी आगे बढ़ी। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप के राइट हैंड बनना है तो हर बात में राइटियस बनो, सदा श्रेष्ठ कर्म करो। प्रश्न है, कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? कौन सा संस्कार सेवा में बहुत विघ्न डालता है? उत्तर है भाव स्वभाव। अब हर एक की विचार अपने है, आत्मा अलग अलग है तो बुद्धि भी अलग अलग है, सबका भाग्य भी अलग अलग है, कर्म भी अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से, लेकिन मिलकर चलना एक बहुत बड़ी कला है। तो भाव स्वभाव के कारण आपस में जो द्वैत मत के संस्कार हो जाते हैं, वो सेवा में बहुत विघ्न डालते हैं। दो मतों से बहुत नुकसान हो जाता है। क्रोध का भूत ऐसा है जो भगवान का भी सामना करने में देरी न करे, है ना, भगवान का भी सामना करेंगे अगर कोई क्रोध में है तो। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऐसा कोई भी संस्कार हो तो उसे निकाल दो। प्यार प्रेम से रहो, कहाँ झुकना भी पड़ता है, मरना भी पड़ता है, हर बात में मानना भी पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, कोई भी संस्कार ऐसा है थोड़ा रोब का, मेरी बात मैं का, बाबा कहते हैं वो मिटा दो। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, लेकिन उसका कितना अर्थ है, कौन से मीठे बच्चे, किसने सुनाया, किसको कहा? तो रूहानी बच्चों अर्थात शिव बाबा जो सुप्रीम रूह है, उनके बच्चों आत्माओं ने शरीर रूपी कर्म इंद्रियों द्वारा गीत सुना। अब तो बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, बहुत मेहनत भी है, आत्म अभिमानी बनने में बहुत मेहनत भी है, अपना अभिमान छोड़ना इसमें ही मेहनत लगती है, और विकार तो सह छूट जाते हैं, लेकिन ये अभिमान नहीं छूटता, तो बहुत मेहनत है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, ये है गुप्त मेहनत। कौन सी है गुप्त मेहनत? घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये है गुप्त मेहनत। बाप भी गुप्त है तो मेहनत भी गुप्त कराते हैं, कोई बाहर दिखावे की मेहनत नहीं है, ये अंदर ही अंदर गुप्त मेहनत अपने से करनी है। बाप स्वयं आकर कहते हैं, हे बच्चों, मुझे याद करो तो कल्प कल्प 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से सतो प्रधान बनेंगे। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे, फिर हम ही अभी तमो प्रधान बने हैं। सतो प्रधान बनना है जरूर, थे सतो प्रधान फिर बनना है, अभी तमो प्रधान बने हैं तो सतो प्रधान बनना है जरूर। गीत में भी कहते हैं, है ना, तकदीर जगा कर आई हूँ, तो गीत में भी कहते हैं तकदीर जो गवाई हुई है वो फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है। तकदीर कितनी ऊंची बनाई थी बाबा ने, अब वो तकदीर हमारी नष्ट हो गई, खत्म हो गई, तो तदबीर कराने के लिए बाबा आए हैं। तो बाबा कहते जो गवाई हुई तकदीर है वो फिर पाने के लिए तदबीर कराने वाला एक ही सर्वशक्तिवान बाप है, क्योंकि सबको पावन बनाते हैं ना बाप। तो पावन बनाना माना तकदीर बनाना। बाप बच्चों को समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, अब तकदीर बनाने आए हो। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, पढ़ाई पढ़ते हैं, अच्छी डिग्री लेते हैं, अच्छी नौकरी मिलती है, या जो भी अपना कार्य करते हैं, तो पढ़ाई से हुई ना, तो तकदीर बनाते हैं। स्टूडेंट स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं ना, वो तो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अब तुम तो छोटे नहीं हो, तुम तो बड़े बुजुर्ग भी हो। हाँ, बड़े हो, बुजुर्ग हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, छोटे बच्चे तो अबोध होते हैं। तुम तो बड़े बुजुर्ग हो, तुम तकदीर बना रहे हो। हाँ, कोई बूढ़े बूढ़े भी हैं, बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है ना। वैसे भी कहते हैं ब्रह्मचर्य में पढ़ाई अच्छी होती है, 25 साल की उम्र तक बुद्धि भी बहुत शक्तिशाली होती है, तो उस उम्र तक पढ़ाई करते हैं। बुढ़ापे से जवानी में पढ़ना अच्छा होता है, जवान की बुद्धि अच्छी होती है, ये तो सबके लिए बहुत सहज है। इतना ऊंचा ज्ञान है, लेकिन सबके लिए सहज है। छोटे बच्चे भी कितना अच्छी तरह ज्ञान देते हैं, बुजुर्ग भी दे सकते हैं, सबके लिए सहज है। तुम्हारा शरीर तो बड़ा है ना, ये बेबी है। अभी कोई छोटा बच्चा बाबा के सामने होगा, माँ उसको गोद में सुला के ले आई होगी बाबा के सामने, तो बाबा कहते ये बेबी है, छोटी बेबी होगी, इतना नहीं समझ सकेगी क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। भले वो जागती भी होगी, आवाज नहीं करती होगी, लेकिन वो क्या समझेगी बाबा की मुरली, वो तो बहुत छोटी है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं, इतने नहीं समझ सकेगी। स्तुति निंदा दुख सुख इन सब बातों को तुम समझ सकते हो। आत्मा तो बिंदी है, भले वो छोटी बच्ची है, लेकिन आत्मा तो सबकी एक जैसी है। तो आत्मा तो बिंदी है, शरीर बढ़ता रहता है, आत्मा तो एक रसी होती है। आत्मा की साइज नहीं बढ़ती है, शरीर भले बढ़ता हो लेकिन आत्मा तो एक रसी होती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है। उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप, ये ज्ञान जो है बाबा उसको किसे भेंट कर रहे हैं, उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं। बाबा की मुरली क्या है? कस्तूरी। देखिए कस्तूरी, किसने देखी है कस्तूरी? नहीं देखी है। हाँ, ये हिरण की नाभि में होती है, कस्तूरी हिरण उसको कहते हैं। तो वो हिरण से बहुत सुगंध आती है, कस्तूरी से बहुत सुगंध आती है। मुझे किसने दिखाई थी, इतनी सुगंध थी, मुझे कहा दीदी आप इसको सूंघो, तो बहुत सुगंध थी उसमें। तो वो कई कहते कि कस्तूरी अगर किसके घर में हो ना, वो बहुत भाग्यशाली होता है, तो उसको बहुत प्राप्ति होती है। तो मैंने कहा अच्छा है, तो उसने कहा मैं दूंगा नहीं किसी को, खाली दिखाई, तो वो देते नहीं है और महंगी भी होती है। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ये ज्ञान जो है वो भी जैसे कस्तूरी है, उस आत्मा की बुद्धि के लिए बाप कस्तूरी जैसी सौगात दे रहे हैं, क्योंकि अभी तो बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई है, सो अब स्वच्छ भी बन रही है। ये चित्र तुमको समझाने में बहुत काम में आते हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के आगे जाकर माथा झुकाते हैं, पूजा करते हैं, आगे तुम भी अंधश्रद्धा से जाते थे, शिव के मंदिर में जाते थे, तुमको ये थोड़ी पता था शिव के मंदिर में जाते थे, शिव पर लोटी चढ़ाते थे, अभिषेक करते थे, लेकिन ये थोड़ी पता था ये शिव बाबा ये भगवान है, ये तो पता नहीं था, बस हाँ पूजा करनी है। बाबा से जरूर वर्षा मिला है तब तो उनकी महिमा गाई जाती है, कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा गाई जाती है ना। स्टैंप भी बनानी चाहिए शिव बाबा की, क्योंकि इतना अच्छा काम करते हैं बाबा शिव बाबा, तो शिव बाबा की भी स्टैंप बननी चाहिए, है ना। बड़े ऐसे जो अच्छा कार्य करके जाते हैं उनकी स्टैंप बनती है, तो बाबा कहते स्टैंप बनानी चाहिए शिव बाबा की। शिव बाबा गीता सर्मोनाइजर, गीता ज्ञान दाता, ऐसे ये स्टैंप सहज बन सकेगी। ये वो बाप तो सबको सुख देने वाला है। बाप कहते हैं मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला हूँ। बुढ़िया भी ये समझती होगी, बुढ़िया भी समझती होगी कि हम आए हैं शिव बाबा के पास जो विचित्र है, जिनको अपना कोई चित्र नहीं है, उसने इस चित्र यानी ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। निराकार को विचित्र कहा जाता है, बुद्धि में रहता है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, मधुबन में आते हैं, क्या समझकर आते हैं, हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जिसने ये टेम्पररी चित्र धारण किया है ब्रह्मा का तन। पतितों को पावन बनाए मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति देना, अथवा इसको और शब्दों में क्या कहेंगे, शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं माना शांति धाम सुख धाम का रहवासी बनाते हैं। मनुष्य शांति के लिए ही कोशिश करते हैं, भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। सुख तो समझते हैं कि जो दुनिया की चीजें उससे मिलेगा, भगवान से तो शांति मिलेगी, तो शांति के लिए भगवान को पुकारते हैं। भगवान मिले तो शांति मिले, सुख के लिए नहीं पुरुषार्थ करते हैं, बस बाप के घर जाएं, हाँ भगवान मिल जाए तो हमको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, यही मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय सब मुक्ति की चाहना रखते हैं। जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, किनको कहो ना सतयुग में चलना है तो कही कहेंगे नहीं 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 सतयुग में क्या जाना, हमको तो फिर कलयुग में आना पड़ेगा, इसीलिए वहां भी नहीं जाना है, बस हमको तो मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, वापस आना ही नहीं है, यही चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति लेने वाले सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो, तुम्हें ही पता है कि जीवन मुक्ति मुक्ति से भी ऊंची है, बाकी तो सब मुक्ति की चाहना रखने वाले हैं। जीवन मुक्ति का रास्ता बताने वाला कोई है ही नहीं। सन्यासियों आदि के पास भी आकर के शांति मांगते हैं, कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। जो भी रास्ता बताने वाले हैं वो है ही मुक्ति में जाने वाले, जो शांति मांगते हैं, जो शांति के लिए मुक्ति की बातें करते, बाबा कहते हैं वो सब है मुक्ति में जाने वाले। उनको मुक्ति चाहिए, जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन मुक्ति का सुख उन्होंने देखा ही नहीं है। द्वापुर के बाद द्वापुर से आने वाली आत्माएं हैं, तो परम धाम से सीधा शांति से ही सीधा अशांति में आ गई, तो उनको तो शांति चाहिए, सुख चाहिए, वो समझ ले सुख तो यहाँ है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मोक्ष क्या होता है वो भी बुद्धि में नहीं आता है। भले कहते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, पर होता क्या है मोक्ष वो तो समझते नहीं है, समझते लीन हो जाएंगे। तंग होकर कहते हैं मुक्ति में जाएं तो अच्छा है। वास्तव में मुक्ति धाम तो आत्माओं के रहने का स्थान है। इतने सेंटर्स पर बच्चे हैं, सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। हम कोई मुक्ति में जाने लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे, मुक्ति में तो सब जाएंगे अंत में, चाहे पुरुषार्थ करे या न करे। नहीं करेगा पुरुषार्थ तो सजा खा के जाएगा, पुरुषार्थ करके जाएगा तो विद ऑनर जाएगा, सम्मान के साथ जाएगा, पर जाना तो सबको है मुक्ति में। तो बाबा कहते हैं सब जानते हैं कि हम नई दुनिया के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। बाबा हमको नई दुनिया का राज्य देते हैं। कहाँ देंगे नई दुनिया का राज्य, कहाँ देंगे? नई दुनिया में देंगे वा पुरानी दुनिया में देंगे? कहाँ देंगे भाई नई दुनिया का राज्य? पुरानी दुनिया में। बाप कहते हैं न पुरानी दुनिया न नई दुनिया, इस समय को क्या कहेंगे? संगम। तो कहाँ देते हैं, कब देते हैं? संगम पर देते हैं। तो ये नहीं कहो पुरानी दुनिया में देते, पुरानी दुनिया से तो अब निकल आए ना, अभी संगम पर है। तो बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, मैं न सतयुग में न कलयुग में आता हूँ, दोनों के बीच में आता हूँ। बाप तो सबको सदगति देंगे ना, ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ देंगे। इतनी दुर्गति हो गई है, बाबा ऐसे छोड़ नहीं देंगे दुर्गति में, सबको ले जाएंगे। तो ऐसे तो नहीं दुर्गति में छोड़ देंगे, छोड़ जाएंगे, हाँ छोड़ जाएंगे और खुद चले जाएंगे, नहीं। सदगति और दुर्गति इकट्ठी भी नहीं रह सकती है, सदगति है या तो दुर्गति है, इकट्ठे भी नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, इसलिए इनसे प्यार नहीं रखना है। बुद्धि कहती है बरोबर, अभी हम संगम युग पर हैं, ये दुनिया बदलने वाली है। अब बाप आया हुआ है, बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको दुख से छुड़ाए, क्या करता हूँ संगम पर आकर तुमको दुख से छुड़ाए, हरि के द्वार ले जाता हूँ। अब हरि का द्वार कौन सा है? ये भक्ति मार्ग का हरि का द्वार तो है ना, हरिद्वार जहाँ गंगा बहती है, वो हरिद्वार में तो कई जाते हैं, अपने आप जाते हैं या कोई पंडा ले भी जाता है, लेकिन बाबा कौन सा हरिद्वार में ले जाते हैं? बाबा कहते हैं तुमको दुखों से छुड़ाए हरि के द्वार ले जाता हूँ। हरि परमात्मा को ही कहते हैं दुख हरने वाला, उसको हरि कहते हैं। अब ये है ज्ञान की बात, कौन से हरिद्वार में ले जाते हैं? हरिद्वार कृष्ण का द्वार, अर्थात कृष्णपुरी को भी कहा जाता है। श्री कृष्ण का भी दूसरा नाम हरि है, तो बाबा कहते हैं उनका भी द्वार स्वर्ग, वो भी हरिद्वार है, और परम धाम शिव बाबा का घर, वो भी हरिद्वार है। तो हरिद्वार श्री कृष्ण का द्वार अर्थात कृष्णपुरी को कहा जाता है। अच्छा, उनके पीछे फिर क्या है? हरिद्वार के आगे जाते तो ये हरिद्वार के बाद क्या आता है? लक्ष्मण झूला आता है ना, वो क्या बोलते हैं जी, हाँ ऋषिकेश। तो ऋषिकेश जाते, हरिद्वार से ऋषिकेश जाते, और वहीं से फिर बद्रीनाथ केदारनाथ ये सब जाते, वहीं से रास्ते, ये चार धाम। तो बाबा कहते तो हरिद्वार के बाद ऋषिकेश आता है, वहाँ लक्ष्मण झूला है, देखा है लक्ष्मण झूला? हाँ, उस पर चढ़ते हैं, चलते हैं तो वो हिलता है। किसने देखा लक्ष्मण झूला? सब चढ़े हैं, चढ़े हैं, हाँ हाँ। बहुत डर लगता, हिलता इतना हिलता है, परंतु वंडर है कि उसको कोई नीचे कोई सपोर्ट भी नहीं है, हिलता भी है लेकिन कभी टूटा नहीं है। हाँ? तो देखो, तो ऋषिकेश, बाबा ऋषिकेश का अर्थ बताते हैं। तो बाबा कहते हैं उसको लक्ष्मण झूला कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, उनके बाद फिर लक्ष्मण झूला लगा दिया है। अब लक्ष्मण झूला क्यों कहते हैं? पहले हरिद्वार आएगा, माना पहले सतयुग आएगा, सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं, फिर रामायण आता है। लक्ष्मण वो तो रामायण का हो गया, और हरि श्री कृष्ण को अगर कहते वो तो सतयुग का हो गया। तो सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, तो हरिद्वार के बाद लक्ष्मण झूला, वो त्रेता युग हो गया। तो बाबा कहते हैं सतयुग को हरिद्वार कहा जाता है, फिर राम लक्ष्मण आदि दिखाते हैं। अब वो बात कोई है नहीं, वो तो बनाई हुई बात है, भाई उसका नाम लक्ष्मण झूला रखा है। राम को कितने भाई दे दिए, आपस में चार भाई थे, अब त्रेता युग में भी चार भाई होंगे क्या? वहां भी तो चलो एक भाई और होगा तो दो भाई होंगे, एक बहन होगी, तो चार भाई तो होंगे नहीं सतयुग, सतयुग में तो होंगे ही नहीं, लेकिन त्रेता में भी नहीं होंगे चार भाई। तो बाबा कहते राम को कितने भाई दे दिए, चार भाई तो होते नहीं, चार आठ भाई तो यहाँ होते हैं, चार आठ भाई तो यहाँ होते ना कलयुग में, किसको तो एक डजन भी भाई होते हैं, पूरा ये टीम क्रिकेट टीम है उनके भाई बहनों की, चार आठ भाई तो यहाँ होते हैं। एक तरफ है ईश्वरीय संतान और दूसरे तरफ है आसुरी संतान। अभी तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए हैं, शिव है बाबा और ब्रह्मा है दादा प्रजापिता, वो आत्माओं का पिता तो अनादि है, और इस समय ब्राह्मणों को रचते हैं। शिव बाबा हाँ है, वो तो अनादि पिता है, पर इस समय ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्रामों को रचते हैं, शालिग्रामों तो आत्मा है, तो आत्माओं को रचते नहीं है, शालिग्रामों को नहीं रचते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा शालिग्रामों को रचते हैं, नहीं, शालिग्राम तो अविनाशी है ही है, आत्मा तो अविनाशी है ही है, सिर्फ बाप आकर के पवित्र बनाते हैं, आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता है? सोना जब तक पवित्र शुद्ध न बने तब तक जेवर कैसे शुद्ध बनेगा, तब तक शरीर कैसे पवित्र बन सकता है? हम आत्माएं पवित्र थी तो सतो प्रधान थी, अभी अपवित्र तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान कैसे बने? ये तो सहज समझ की बात है। तुम इस समय खाद पड़ने से पतित तमो प्रधान हो गए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। हिसाब किताब चुकतू कर सब शांति धाम व सुख धाम में जाएंगे। आत्माएं निराकार घर से कैसे आती है उसकी यादगार बाबा ने यादगार बताया, आत्माएं परम धाम से आती है इस सृष्टि मंच पर, उसकी यादगार क्या है? उसकी यादगार है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री देखा है ना, अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस ट्री यहाँ भी सजाते हैं, ऊपर में शिव बाबा बड़ा स्टार और फिर चारों ओर सितारे, वो छोटे छोटी ये लाइटें जलाते हैं सारे क्रिसमस ट्री पर। तो बाबा उसका अर्थ बताते हैं, आत्माएं निराकारी घर से कैसे आती है उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। सारे झाड़ में अंदर छोटे 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 बल्ब होते हैं, वो अंदर जगमगाते रहते हैं और एक बड़ा झाड़ ऊपर में होता है, तो वो शिव बाबा और बाकी सब आत्माएं उस क्रिसमस ट्री में होते हैं। तो उसकी यादगार भी क्रिश्चियन लोग झाड़ में बल्ब लगाकर मनाते हैं। तुम जानते हो ये सभी धर्मों की अलग अलग शाखाएं हैं, क्रिश्चियन धर्म भी अलग शाखाएं हैं इस कल्प वृक्ष की, वहां से आत्माएं कैसे नंबर वार नीचे उतरती है ये नॉलेज तुमको मिल गई है। वो आत्माएं आती है और फिर वो आत्माएं कैसे चमक रही है उस क्रिश्चियन के वो क्रिसमस ट्री में, तो आत्माएं है ना वो। हम आत्माओं का घर शांति धाम है, अभी है संगम, वहां से सब आत्माएं आ जाएगी। फिर क्या होगा, वहां से सब आत्माएं जब आ जाएगी तो फिर सब जाएंगे, परम धाम भी खाली कभी नहीं रहता और ये सृष्टि भी कभी खाली नहीं रहती। परम धाम से आत्मा आई, लास्ट आत्मा, और यहां से वहां पहुंची, वहां से निकली और यहां से पहुंची, तो दोनों ही धाम खाली नहीं होते कभी। तो बाबा कहते हैं वहां तो सब आत्माएं, वहां से सब आत्माएं आ जाएगी, फिर सब जाएंगे, प्रलय तो होनी नहीं है। ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि इस दुनिया में सब खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, फिर नई सिर कहां से आएगा, पुराना भी रहता है उससे ही फिर नया बनता है, प्रलय तो होने की नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने फिर से स्वराज्य लेने आए हैं। ये कोई सिर्फ कहने मात्र नहीं है कि हम बाबा से स्वराज्य लेने आए हैं, याद से ही वर्षा मिलेगा। बाप कहते हैं देह सहित जो भी देह के मित्र संबंधी आदि है सबको भूल जाओ। पूरा वर्षा लेना है तो देह से देह के सब संबंधों धर्मों को सब भूल जाओ। चित्र और विचित्र है ना, विचित्र उनको कहा जाता है, किसको विचित्र कहा जाता है, जिनको देखा नहीं जाता, इन आंखों से नहीं देखा जाता वो विचित्र। ये बहुत महीन बातें हैं, आत्मा कितनी छोटी है उनको घड़ी घड़ी पाठ बजाना पड़ता है, और किसकी बुद्धि में ऐसी बातें है नहीं। तो पहले पहले तो ये बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्मा है, वो हमारा बाप है, उनको ही पतित पावन हे भगवान कहकर याद करते हैं, दूसरी कोई जगह जाने की दरकार ही नहीं है। बाबा को कहां भी याद कर सकते हो, कोई खास कोई जगह जाना है जरूरी नहीं है कि वहां जाके याद करेंगे, दूसरी कोई जगह जाने की दरकार ही नहीं है। तो याद भी एक को करना चाहिए, भगवान को याद करते हैं तो जरूर उससे कुछ मिलने का होगा, क्यों याद करते हैं भगवान को, जरूर कुछ मिलने का होगा उनसे, फिर दर दर धक्के क्यों खाते हो, कहां भी याद कर सकते हो, घर घर धक्के क्यों खाते हो, हाँ दर दर धक्के क्यों खाते हो। भगवान को तो परम धाम से आना पड़े ना, हम तो जो नहीं पर, तो बाबा कहते हैं भगवान को तो परम धाम से आना पड़े, हम तो जा नहीं सकते। अगर हम अभी चाहें कि हम परम धाम जाएं तो बाबा कहते तुम, हम तो जा ही नहीं सकते क्योंकि पतित हैं, पतित वहां तो जा न सके। अभी तुम वंडर खाते हो, किस बात का वंडर खाते हो, कि भक्ति मार्ग का पाठ कैसे वंडरफुल है, कैसे हमने भक्ति की है, द्वापर युग से कितनी भक्ति करते आए, कितना वंडरफुल पाठ है भक्ति का। एक भगवान को ही याद करते, हे ईश्वर हे परम पिता ओ गॉड फादर, जब वो एक ही है फिर दूसरी तरफ धक्के क्यों खाते हो। कितना तीर्थों पर जाते हैं, बाबा कहते जब वो एक ही है तो उतने धक्के क्यों खाते हो, वो एक ऊपर में रहते हैं, परंतु ये सब नूंद है। भक्ति मार्ग में धक्के खाना, बाबा कहते ये भी नूंद है, ड्रामा अनुसार भक्ति करते हैं बेहद बेसमझी से, बेहद बेसमझी से भक्ति करते हैं। अभी तुम फिर बेहद समझदार बनते हो, कहां बेहद बेसमझ और कहां बाबा हमें बेहद समझदार बनाते हैं। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं, कौन बनते हैं समझदार, जो श्री मत पर चलते हैं, वो फिर छिपे नहीं रह सकते हैं। पता चल जाता है कि ये श्री मत पर पूरा चल रहा है, वो फिर छिपे नहीं रह सकते हैं, वो सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। अगर कोई ऐसे गलत काम किया तो बाबा कहते हैं वो समझदार कहाँ हुआ, समझदार तो कोई गलत काम नहीं करेगा ना, वो फिर छिपे भी नहीं रह सकते हैं, वो सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। तो बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता है तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए। अगर किसी को ऐसे कटु वचन कह के दुख दिया तो फिर बाबा कहते हैं ये समझदार तो नहीं हुआ ना। तो किसी को ऐसे शब्द भी नहीं बोलना चाहिए जिससे उसको दुख हो। तो दुख हुआ तो बेसमझ हुए ना, हमने ऐसे शब्द बोल दिए। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं, वो फिर छिपे नहीं रह सकते हैं, वो सदैव श्रेष्ठाचारी काम ही करेंगे। तो बाप कहते हैं हम दुख हरता सुख करता है तो बच्चों को भी कितना मीठा बनना चाहिए, बाप का राइट हैंड बनना चाहिए, सदैव सुखदाई बोल बोलने चाहिए, कर्म करने चाहिए, सोचना चाहिए, सुखदाई बाप का राइट हैंड बनना है, बनना चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हैंड से इतना काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं, इसलिए इस राइट हैंड को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं, वो ब्राह्मण भी कहेगा ना विश्वाह करो ये करो राइट हैंड से करो, लेफ्ट हैंड से नहीं, हमेशा राइट हैंड। हैंडशेक भी करते हैं तो भी राइट हैंड से, ऐसे भी करते हैं तो भी राइट हैंड से, हाँ ये दायां हाथ ही करता। तो बाबा कहते हैं राइट हैंड है ना, तुमको मालूम है लेफ्ट हैंड से इतना काम नहीं कर सकते हैं, बाएं हाथ से कितना करेंगे, राइट से ही करते हैं, क्योंकि राइट हाथ राइटियस काम करते हैं, इसलिए इस राइट हाथ को ही शुभ काम में लगाते हैं। पूजा हमेशा राइट हैंड से करते हैं। तो बाप कहते हैं हर बात में राइटियस बनो, बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। मत और गत व गति करने की मत एक ही है, मत और गत, हाँ मति तो गति करने की मत एक ही है, इसलिए आता है ग्रंथ में आता है तुम्हारी गत मत तू ही जान, ईश्वर की गति करने की जो मति है वो तो वही जाने और न जाने कोई। मत और गत व गति करने की मत एक ही है, तो गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत ईश्वर ही जाने। पतित पावन भी वही है, वही जानते हैं मैं मनुष्यों को पावन बनाए दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा, ये भगवान ही जानते हैं कि मैं सबको दुर्गति से सदगति में कैसे ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं परंतु सदगति तो होती नहीं, फल कुछ भी मिलता नहीं, सदगति देने वाला तो एक ही बाप है। भक्ति में जो जिस भावना से पूजा करते हैं उनको वो फल देने वाला भी मैं ही हूँ, ये गीता में भी आता है, जो जो जिस भावना से भजते हैं मैं उनको उनकी भावना का भाड़ा देता हूँ। जो भूतों के उपासक है वो भूतों को प्राप्त होते हैं, ये गीता के शब्द है, जो भूतों के उपासक है वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो देवों के उपासक है वो देवों को प्राप्त होते हैं, जो मेरे उपासक है वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो अपने आप को सबसे ऊंचा रखा, तो इसीलिए देता तो बाबा कहते मैं ही हूँ, हर एक को उनके जो पुरुषा जो कुछ करते उसका फल मैं देता हूँ, उनको वो फल देने वाला मैं ही हूँ, वो भी ड्रामा में नूंद है। अगर ड्रामा में नूंद होगी तो मिलेगा ना, ड्रामा में नूंद है, उनको आप ही मिल जाता है अपने पुरुषार्थ से। मैं देता हूँ वर्ड तो वो भी ड्रामा अनुसार अपने ही पुरुषार्थ से, ऐसे नहीं सबको एक जैसा देता हूँ, जैसा करेगा वैसा ही उसको मिलेगा अपने पुरुषार्थ से। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से ही बच्चों को बनना है। अब पवित्र भी अपने पुरुषार्थ से बच्चों को बनना है। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बाप को याद करो, वही सर्वशक्तिमान ऑल माइटी अथॉरिटी कितना अच्छा बनाते हैं तुमको। तुम सब कुछ जान चुके हो फिर बाप से वर्षा ले रहे हो, रचयिता और रचना की नॉलेज अब तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो ये नॉलेज हमारे में नहीं थी, बाबा का बनने से पहले थोड़ी ये नॉलेज थी। यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, ये सब है शास्त्रों की नॉलेज, उनको भक्ति कहा जाता है। भक्ति का तो कितना बड़ा विस्तार है। तो ये सब आज ये तो बाबा कहते यज्ञ तप आदि करना, शास्त्र आदि सुनना, ये शास्त्रों की नॉलेज, उनको भक्ति कहा जाता है। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या मिलेगा इससे बाबा कहते वो पता नहीं, एम ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं। पढ़ाई में तो एम ऑब्जेक्ट रहती है, डॉक्टर इंजीनियर वकील बनेंगे पता है, उस पढ़ाई से एम ऑब्जेक्ट होती है, कोई न कोई प्रकार की नॉलेज होती है। हमको पतित से पावन बनने की नॉलेज पतित पावन बाप ही दे रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाप ने ही दी है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इसमें सभी एक्टर्स पाठधारी है। ये अनादि नाटक बना हुआ है, ये बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए ना। हम एक्टर्स हैं और हमें अपने नाटक का पता ही न हो तो बाबा कहते उसको क्या कहेंगे हम। तो ये अनादि नाटक बना हुआ है, ये बेहद की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम घोर अंधियारे से निकल घोर सोझरे में जा रहे हैं। तुम अभी देवता बन रहे हो, ये वो भी समझाना है। हाँ, क्या समझाना है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म है जिसको हिंदू धर्म कह दिया है। धीरे धीरे ये बात भी समझ जाएंगे, बच्चों को खड़ा होना चाहिए। अब सेवा की बात बाबा कहते बच्चों को खड़ा होना चाहिए, इसमें तो ढेर बच्चे चाहिए। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, बाबा उस समय कहते थे हाँ बहुत दिल्ली में बड़ी कॉन्फ्रेंस करो, अभी तो बहुत होता है। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, परिस्थान भी दिल्ली को कहा जाता है, यही जमुना का कंठा था। दिल्ली में ही परिस्थान था, यही जमुना का कंठा था, दिल्ली कैपिटल है ना। बहुतों के हाथ आई है, कितनों ने दिल्ली पर राज्य किया है। देवताओं की कैपिटल भी यह दिल्ली है, इंद्रप्रस्थ उसको कहते हैं। तो देवताओं की कैपिटल भी ये थी, दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती है। उस समय तो छोटा परिवार था, अभी तो देखो जब 21 जून को हम लोग करते हैं, लाल किले पर करते हैं या बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, तो देखो कितने बाबा के बच्चे आ जाते हैं, बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़े बड़े स्टेडियम में भी प्रोग्राम करते हैं। तो दिल्ली में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो करने नहीं देती है, विघ्न बहुत डालती है। आजकल क्यों बड़े प्रोग्राम करना, एक तो उसमें विघ्न आते हैं, आजकल भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं, कई मतें हो गई है, तो हर एक अपनी अपनी मत चलाता है, भाव स्वभाव भी बहुत हो गए हैं। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है, मिलकर करेंगे तो भवका होगा, बड़ा कार्यक्रम होगा, अकेले अकेले करेंगे तो कितना बड़ा प्रोग्राम तो नहीं बना सकेंगे। बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस में लगना है, वे लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजाई ही उड़ा देती है, राजाई ही उड़ जाती है ना। आपस में मतभेद है, पार्टीज में मतभेद है, तो वो एक पार्टी जो जो राजा है या जो गद्दी पर है उसी को उड़ा देते हैं, हाँ उसी को मार डालते हैं, फिर दूसरी पार्टी वो राज्य करना शुरू करते हैं। तो बाबा कहते हैं राजा ही उड़ा देते हैं, वो लोग भी आपस में नहीं मिलते हैं तो राजा ही उड़ जाती है, दो पार्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट को भी उड़ा देते हैं, बहुत करते हैं। द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है, तो जो रूलिंग पार्टी है उसको अपोजिशन वाले बहुत परेशान करते हैं ना, काम करने ही नहीं देते पार्लियामेंट में, आजकल यही तो हो रहा है, काम ही नहीं करने देते अपोजिशन वाले, लड़ते ही रहते बोलते ही रहते। तो बाबा कहते हैं द्वैत मत बड़ा नुकसान करती है, फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करती है। बताओ माया ऐसी है, बाबा के बच्चों में भी हाँ वो द्वैत मत अगर आ गई तो क्या होगा, बाबा की बड़ी सेवा थोड़ी हो सकेगी। तो बाबा कहते हैं फिर भगवान का भी सामना करने में देरी नहीं करते हैं, नुकसान भी बहुत पाते हैं, क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो, बात मत पूछो। जब बाबा कहते ना बात मत पूछो, माना इससे आगे क्या होगा, ऐसे एक दो को एक दो से लड़ते रहेंगे, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, क्रोध का भूत आ जाता है तो फिर बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, गुड़ कितना मीठा है वो गुड़ की जो थैली होती है ना वही जाने। तो बाबा के पास तो समाचार आते हैं बच्चों के सेंटरों के, तो कहाँ न कहाँ कुछ न कुछ होता ही है क्योंकि इतनी आत्माएं हैं, फिर मतभेद होता है तो बाबा को समाचार लिखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, बाबा जानते हैं कैसे कैसे बच्चे हैं। गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, बाप बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुना रहे हैं। अब कोई धारणा करे व न करे वो है पुरुषार्थ परमदार। बाबा तो सुनाते हैं श्रीमद देते, अभी कोई सुने न सुने पुरुषार्थ करे न करे ये तो उसकी अपनी मर्जी, बाबा जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। वो है पुरुषार्थ परमदार, ऐसे नहीं कि कोई पर बाबा आशीर्वाद व कृपा करेंगे, आशीर्वाद व कृपा की बात ही नहीं है इसमें, कृपा आदि मांगने की तो बात ही नहीं है। प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता फिर तो बाप कहते मैं इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों, अगर वहीं से प्रेरणा से मैं सब कुछ कर सकता था तो गंदी दुनिया में आने की भगवान को क्या दरकार, इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं, इसमें पुरुषार्थ करना होता है, यहाँ आशीर्वाद नहीं मांगी जाती। बाबा कहते हैं अपने ऊपर आशीर्वाद करो, इसमें पुरुषार्थ करना होता है, प्रेरणा की भी बात नहीं। तुमको तो इस समय तीन इंजन मिली है इकट्ठी, तीन इंजन मिली है इकट्ठी, कौन सी तीन इंजन मिली है, शिव बाबा हमारा बाप भी है टीचर भी है और सतगुरु भी है, ये तीन इंजन बाबा इस समय हमारी बनते हैं। तुमको तीन इंजन मिली है इकट्ठी, वहाँ तो बाप अलग टीचर अलग मिलता है, गुरु फिर पिछाड़ी में मिलता है, यहाँ तो ये तीनों इकट्ठे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको पूज्य बनाता हूँ तुम फिर पुजारी बन जाएंगे, बड़ा युक्ति से समझाना है, ऐसा न हो कोई बेहोश हो जाए, माना उनको ये ज्ञान सुनाओ फिर उनको कहो कि सत्य त्रेता में हम जाएंगे फिर हम गिरेंगे फिर माया के वश हो जाएंगे तो उसको तो धक्का लगेगा, इतना पुरुषार्थ करेंगे फिर गिरेंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं, कोई युक्ति से समझाना है, ऐसे न हो कि कोई बेहोश हो जाए, बेहोश हो जाए माना कोई ऐसे शब्द कहो जो वो तो हैरान हो जाए ऐसे कैसे होगा। पहले पहले मुख्य है दो बात, दो बाप की बात, भगवान बाप है उनका जन्म शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, जरूर स्वर्ग का मालिक बनाते होंगे। भारत में ही स्वर्ग था, अभी नरक के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई खड़ी है। जरूर बाप नई दुनिया की स्थापना कराने वाला भी है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। अभी तो ये है ना, प्रण किया ना, भारत को नशा मुक्त बनाकर ही छोड़ेंगे, तो ये भी एक प्रतिज्ञा है। बाप की श्रीमत पर ही हम कहते हैं कि भारत को हम पावन बनाकर ही छोड़ेंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान बनना है, बहुत मीठा बनना है, सदा शुभ काम करके राइट हैंड बन जाना है। दूसरा, कभी दो मते नहीं बनानी है, भाव स्वभाव में आकर एक दो का सामना नहीं करना है, क्रोध का भूत निकाल देना है। वरदान, स्वयं की स्मृति में रहे, स्वयं की स्मृति माना स्वमान, स्वयं की स्मृति में रहे, अपने हर कर्म को संयम यानी नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। स्वयं की स्मृति में रहे, अपने हर कर्म को संयम यानी नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। ब्रह्मा बाबा ने जो कर्म किया स्वयं की स्मृति में रहे, है ना, ब्रह्मा बाबा को इतना स्वमान था, तो बाबा कहते जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वो ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया कि हमको वही करना है जो ब्रह्मा बाबा ने किया, उनके ही फुटस्टेप्स पर फॉलो करना है, उनके ही कदमों पर चलना है। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे, ब्रह्मा बाबा कह सकते थे अथॉरिटी से, क्योंकि स्वयं के नशे में थे, कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। ब्रह्मा बाबा कहते थे समझो उल्टा कर्म हो भी गया तो शिव बाबा उसको सुलटा कर देंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का राइट हैंड है, पूरा पक्का बाबा की हर श्रीमत का पालन करने वाला, कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है, अपने स्वमान में रहने से या स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से ये नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता है। तो ब्रह्मा बाबा को भी नशा था, कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता, अगर कोई समझता कि उल्टा ये ठीक नहीं है शिव बाबा ठीक कर देगा, इसलिए ब्रह्मा की मत भी मशहूर गाई हुई है ना, कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोल बोलेंगे व कर्म करेंगे वो संयम यानी नियम बन जाएगा। स्लोगन, पवित्रता का पिलर मजबूत करो, खंबा होता है ना, खंबा स्तंभ, पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा, लाइट हाउस हिलता नहीं है। हाँ, तो इसीलिए पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो ये पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। यह व्यक्ति इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। वैष्णव किसको कहेंगे? वो वैष्णव कट्टर वैष्णव किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। अगर किसने भूल से भी उनको हाथ लगा दिया या कि स्नान करेंगे ना ऐसे। तो अगर बुद्धि में अशुद्ध संकल्प व पुराने संस्कार संकल्प रूप में भी टच होते हैं तो संपूर्ण वैष्णव नहीं कहेंगे। जैसे कोई अकर्तव्य कार्य देखता भी है तो देखने का भी असर हो जाता है, करना तो दूर केवल देखता है तो वो भी बाबा कहते हैं उसका असर हो जाता, उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में अगर टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्रता पवित्र कैसे कहेंगे? तो टच भी नहीं होने चाहिए आप अपवित्र संकल्प। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज से भट्टी शुरू हो रही है मधुबन में, खास रिले पाल ले।